लगता है आज बहुत सारे भक्त भक्ति से छुट्टी ले रहे हैं, दिवाली की छुट्टी। दिवाली की छुट्टी ले जाती है स्कूल कॉलेज में दफ्तर में, लेकिन मंदिर से भी छुट्टी नहीं लेना चाहिए, भक्ति से छुट्टी नहीं लेना है। आज एक ऐसे चर्चा करेंगे जो हम सबके लिए बहुत प्रिय है। ऐसे तो कई चीजें बहुत प्रिय हैं, बताइए तो कौन सा विषय आज होगा? हाँ, क्या भक्ति? भक्ति तो प्रिय है, लेकिन उससे ज्यादा प्रिय क्या है? लीला भगवान की। ये तो बहुत शुद्ध भक्तों की बात है। हम बात कर रहे हैं उस विषय का जो हम सब रोज करते हैं, निद्रा, नींद। कितनी सुंदर चीज है ना? कितना आनंद आता है नींद में। अभी अभी भी कीर्तन के समय कितने भक्त आनंद का अनुभव कर रहे थे, और उनके चेहरे से भी दिख रहा था आनंद एकदम। जब किसी को सोते हुए देखते हैं तो पता चलता है कि कितना सुखी है उस समय। वास्तव में संसार का सुख केवल उस समय है बस। एक बार आदमी जाग जाता है तो केवल दुख। तो केवल उस समय जितना तथा कथित सुख है संसार का, उस समय अनुभव करना चाहिए। तो ये नींद के पीछे कितने करोड़ों रुपए खर्च हो जा रहे हैं। अच्छी तरह से सोने के लिए सही तकिया, सही गद्दी, सही चादर, सही तरह के कपड़े रात को पहनने के लिए, फिर कमरा कैसे होना चाहिए, एयर कंडीशनर चाहिए, ये चाहिए, पंखा चाहिए, बहुत कुछ चीजें, मच्छरदानी चाहिए हमको, नहीं तो मच्छर काटते हैं, नींद नहीं आती। कितनी व्यवस्था हमें करनी चाहिए, करनी पड़ती है ये नींद के लिए। और ये आनंद जब आदमी इसमें चला जाता है तो दूसरे आनंदों को भूल जाता है। जब आदमी को नींद आती है ज्यादा, आप उसको कहेंगे अच्छा खाना देंगे, भोजन देंगे, आपको अच्छा सिनेमा दिखाएंगे, पैसे देंगे, कुछ नहीं, उसको केवल नींद ही चाहिए उस समय। लेकिन अगर हम थोड़े से गौर से सोचेंगे तो हम जान पाएंगे कि ये जो नींद का आनंद है वो तो पशुओं को पक्षियों को भी उपलब्ध है। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशु भी नराणाम। पशुओं में और प्राणी और मनुष्य में ये आहार निद्रा भय मैथुन, ये चार चीजें समान पाई जाती हैं। इसलिए जो आनंद हमें आता है सोते हुए, वो रस्ते के जो पशु हैं उनको भी आते हैं, वही आनंद आता है, बल्कि शायद ज्यादा आता होगा, क्योंकि हमको गोली लेके सोना पड़ता है, नींद नहीं आती, और हमको गद्दी चाहिए, ये चाहिए। लेकिन कुत्ते को कुछ नहीं, रास्ते में देखो कहीं भी सो जाता है, बिल्ली चूहा कहीं भी सो जाते हैं, उनको कोई परवाह नहीं है। लेकिन मनुष्य को और पशु को समान बनाने वाला, ये बनाने वाली चीज है निद्रा। चाहे आदमी राजा हो, विश्व सम्राट हो, चक्रवर्ती राजा हो, या चाहे कोई साधारण आदमी हो, या रस्ते का कोई पशु हो, कुत्ता बिल्ली हो, जब वो सो जाते हैं तो सब समान, कोई फर्क नहीं। उस समय नींद सारे प्राणियों को समान बना देती है, सब एक स्तर के हो जाते हैं उस समय। क्यों? क्योंकि निद्रा मतलब विस्मृति। विस्मृति मतलब हम भूल जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। वैसे भी आध्यात्मिक दृष्टि से हम भूल चुके हैं कि हम कौन हैं, लेकिन भौतिक दृष्टि से भी हम भूल जाते हैं कि हमारा नाम ये है, हम इस घर में रहते हैं, हम दिखने में ऐसे हैं, इस कक्षा तक हमने स्कूल में पढ़ा है, सब भूल जाते हैं। तो ऐसे विस्मृति की अवस्था में जो व्यक्ति, पशु, जो भी सो रहा है, उसे कुछ भी मालूम नहीं रहता है, और आजू बाजू बगल में क्या चल रहा है वो भी कुछ पता नहीं चलता, बस मस्त रहता है वो। इसलिए निद्रा ये एक प्रकार की मृत्यु है, बल्कि मृत्यु से अलग नहीं है ये। मृत्यु कैसे, मृत्यु के बाद क्या होता है, सब शांत। इसलिए ऐसे अवस्था में जीव शांत रहता है। भगवत ज्ञान तो क्या, शरीर का ज्ञान भी नहीं रहता है, इस उसके परिसर में क्या चल रहा है उसका ज्ञान भी नहीं होता है उसको। शास्त्रों में बताया जाता है कि जो जीव इस संसार में रहता है उसके चार तरह के चेतनाएं हो सकती हैं। एक को कहते हैं जागृति। आशा करते हैं कि आप सब इस चेतना के स्तर में स्थित हैं और रहेंगे अभी। जागृति मतलब शब्द साधारण है, आप सब समझते हैं, जिसमें हम जगे हुए हैं, हम समझ सकते हैं कि हमारे वातावरण में क्या चल रहा है, जिसमें हमारा शरीर भी काम करता है और मन भी क्रियाशील है, दोनों काम करते हैं, बल्कि मन जरूरत से ज्यादा क्रियाशील है ना। अभी प्रवचन सुनते सुनते मन और क्या क्या सोच रहा है, अपनी परीक्षा कीजिए आप, मन कितने विषयों पर भटक गया है केवल इन थोड़े चंद मिनटों में। तो मन ज्यादा कार्य करता है और शरीर भी। अभी एक स्थान में बैठना कठिन, आप देखिए आप कितने बार आपने जगह बदला होगा, यूं करना यूं करना, मतलब शरीर को परिवर्तन होता ही है। तो जागृत अवस्था में शरीर और मन दोनों काम करते हैं, व्यक्ति चल सकता है, बोल सकता है, फिर सकता है, सोच सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। इसके बाद में दूसरा स्तर आता है चेतना का, जिसको कहते हैं स्वप्न। स्वप्न मतलब आप जानते हैं, मैं राजा हूं, हम नी सो गए सपने में, हम देख रहे हैं मैं राजा हूं, मेरे पास इतना धन दौलत है, इतने बड़े महल हैं, हाथी घोड़े हैं, मैं सारे विश्व भर को मैंने जीत लिया है। तो हम नींद में है, नींद में ही हम कुछ देख रहे हैं। शरीर तो अपने बिस्तर पे खटिया पे लेटा हुआ है, शरीर हिल नहीं रहा है, लेकिन मन तेजी से चल रहा है, मन इधर उधर जा रहा है। और कभी कभी यह भी देखा जाता है कि क्योंकि मन स्वप्न के अवस्था में इतनी तेजी से चलता है, कभी कभी इस शरीर को जो कि प्राय मृत अवस्था में ऐसे लेटा हुआ ऐसे प्रतीत होता है, उस शरीर को भी क्रियाशील बना देता है। आपने देखा होगा ना, कई लोग नींद में बोलते हैं, है ना, ऐसा देखा है सुना है, या कभी भी बुरा सपना आता है तो हा करके कोई चिल्लाते हैं। एक बार ट्रेन में ऐसे, हम तो घबरा गए, क्या हो गया, हमारे पास में एक आदमी सोया था, चिल्ला चिल्ली करने लगा रात, अरे क्या हो गया क्या हो, देखा तो वो सपना आ रहा था, सारे लोग उठ गए और उसको समझा भी नहीं क्या हुआ, लेकिन हम लोग हमारी नींद खराब हो गई। तो आदमी को जब बुरा सपना आता है तो ऐसे चिल्लाता है, पसीने छूट जाते हैं। अगर हमें लगे कि यहां तिलकवाड़ी के कुत्ते हमारे पीछे पड़ गए हैं, सुबह मंगल आरती आते समय वो आ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पसीने छूट जाते हैं नींद में भी, तो नींद से जाग जाते हैं, देखते हैं कि अरे पसीने पसीने हो गए। मतलब मन की क्रिया अब इतनी प्रभावशाली है कि शरीर के ऊपर भी इसका प्रभाव हो जाता है। लेकिन साधारणतः शरीर शांत रहता है, मन तेज रहता है, कुछ ना कुछ कार्य करते रहता है मन, तो शरीर को आराम मिल जाता है स्वप्न अवस्था में, लेकिन मन को आराम नहीं मिलता। लेकिन शरीर और मन दोनों को आराम की आवश्यकता है। कई बार हम देखते हैं शरीर भी हमारा स्थित हो लेकिन मानसिक अशांति होती है, मन से हम थके हुए हो जाते हैं, कितनी समस्या, ये समस्या, वो समस्या, ये चीज, वो अड़चन। तो कई लोग बोलते हैं कंटाला आला, थक गए, मतलब शरीर से नहीं मन से थक गए, इसलिए मन को भी आराम की जरूरत होती है। इसलिए भगवान ने शरीर को ऐसे बनाया कि पहले जागृत अवस्था, फिर स्वप्न अवस्था और फिर सुषुप्ति, ये तीसरा स्तर है चेतना का। सुषुप्ति मतलब नींद, सच्ची नींद, जिसमें स्वप्न भी नहीं आता, और उस समय शरीर को आराम मिलता है, मन भी शांत हो जाता है, मन भी चंचल नहीं रहता उस समय। दोनों ही शांत रहते हैं और सुषुप्ति की अवस्था में ये घोर निद्रा है, जैसे व्यक्ति बेहोश हो चुका है या उसको डॉक्टर लोग ऑपरेशन करते हैं, उसको कोई इंजेक्शन डाल देते हैं बेहोश करने के लिए, वैसे ही हो जाता है आदमी, या आदमी कोई मर जाता है प्राय उस तरह से हो जाता है। सुषुप्ति की अवस्था में जो व्यक्ति सोया हुआ है और जो आदमी मरा हुआ है, इन दोनों में अंतर क्या है? अंतर इतना ही है कि जो व्यक्ति सो रहा है उसके शरीर के अंदर आत्मा अभी तक है और जो मर चुका है उसकी आत्मा बीत चुकी है, शरीर से बाहर जा चुकी है, बस इतना ही फर्क है। नहीं तो बाहरी लक्षणों से देखा जाए तो दोनों एक समान दिखते हैं। और जो सोया हुआ व्यक्ति है वो जागता कैसे है आपको मालूम है? हम रोज अनुभव करते हैं, हम सो जाते हैं फिर जागते हैं, कौन हमको जगाता है? कैसे जग जाते हैं हम? हाँ, मन जगाता है, परमात्मा हमारे हृदय में स्थित, भगवान श्री कृष्ण हमारे हृदय में है, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 15वें अध्याय में कहते हैं कि मैं सारे प्राणियों के हृदय में स्थित हूं और वहां स्थित होकर मैं उनको स्मृति विस्मृति और ज्ञान प्रदान करता हूं। तो जब हम सोए हुए रहते हैं, ये इन तीनों में से कौन सी चीज की अवस्था है? विस्मृति स्मृति या ज्ञान? विस्मृति। फिर भगवान अंदर से क्या करते हैं? स्मृति दिला देते हैं, ज्ञान दिला देते हैं, हम जाग जाते हैं, भगवान जगाते हैं हमको, हम जाकर हमको याद आता है, अरे हाँ मेरा नाम ये है वो है, अब मुझे वहां जाना है यहां जाना है, ये मेरा घर है, सब ठीक ठाक याद आ जाता है। तो जो परेशानियां हैं वो भी याद आ जाती है, आज परीक्षा है, अरे रे रे रे, वो भी याद आ जाता है। तो अंदर भगवान, अंदर से भगवान सब कुछ हमें याद दिलाते हैं। तो स्मृति की अवस्था में हम जागृत रहते हैं, लेकिन जब सोना होता है तो कौन सुलाता है हमको? कौन सुलाता है? परमात्मा। वो भी भगवान सुलाते हैं, भगवान स्मृति से विस्मृति की अवस्था में हमें डालते हैं, यह है नींद। सो जाने का मतलब है स्मृति से विस्मृति में जाना, जागने का मतलब है विस्मृति से स्मृति में आना, और दोनों ही कार्य परमात्मा की सहायता से होते हैं। परमात्मा मतलब भगवान श्री कृष्ण जो कि हृदय में स्थित हैं। अगर भगवान नहीं करते हैं ऐसा तो हम कभी सो नहीं पाएंगे, इसलिए लोगों को गोली लेनी पड़ती है फिर भी नींद नहीं आती कभी कभी। और अगर परमात्मा नहीं चाहे तो एक बार हम सो गए हम जागेंगे नहीं, फिर क्या होगा आदमी को? राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, फिर स्मशान में ही जाना होगा, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसलिए देखिए भगवान हर एक चीज में हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण उनका योगदान है। अगर भगवान नहीं होते हम तो साधारण से साधारण चीजें हम नहीं कर सकते थे, खा नहीं सकते, हमारा पचन नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। हर छोटी से छोटी चीज के लिए हम भगवान श्री कृष्ण के ऊपर पूर्णतया निर्भर हैं। लेकिन फिर भी ऐसे मूर्ख लोग हैं जो बोलते हैं भगवान नहीं है, किसने देखा भगवान को? तो खैर, ये है तीन अवस्थाएं, निद्रा की या जागृत अवस्था की, चेतना की, जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति। ये तीनों अवस्थाएं शरीर से संबंधित हैं, लेकिन इन तीनों चेतनाओं की अवस्थाओं के परे एक और चेतना का स्तर है। किसी को इसका नाम मालूम है? हाँ, समाधि या तुरिया। समाधि मतलब वो चेतना का स्तर जब वो प्राणी या वो व्यक्ति बिल्कुल आत्मा के स्तर पर स्थित हो चुका है, अपने आप को जान लेता है, शरीर से संबंध नहीं जोड़ता, वो समझ गया है कि मैं श्री कृष्ण का अंश हूं, मैं आत्मा हूं, ये शरीर नहीं हूं, पूरी तरह से आध्यात्मिक स्तर में स्थित हो जाता है। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचती न कांक्षती। तो ऐसे ब्रह्मभूत में स्थित होने वाला जो व्यक्ति है वो हमेशा समाधि की अवस्था में रहता है। प्रजहाति यदा कामान, सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते। तो जो व्यक्ति इंद्र तृप्ति के विषयों को भूल गया है, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान, मन के विकार से उत्पन्न होने वाले इंद्र तृप्ति की इच्छा, इनको इसने हमेशा के लिए त्याग दिया है। आत्मनि एव आत्मना तुष्टः, अपने अंदर ही अंदर आत्मा की संतुष्टि का अनुभव करता है, शारीरिक आनंद में कोई रुचि नहीं लेता है। तो ऐसा व्यक्ति केवल समाधि की अवस्था को प्राप्त कर सकता है। भक्ति की साधारण भाषा में समाधि मतलब क्या? समाधि मतलब भगवान का सतत स्मरण। जो व्यक्ति सदैव भगवान का स्मरण करता है वो समाधि की अवस्था में है, हमें ऐसे समझ लेना चाहिए। तो ये समाधि की अवस्था को प्राप्त करना हमारे जीवन का उद्देश्य है। और जो व्यक्ति समाधि को प्राप्त कर लेता है, उसके लिए चाहे वो जागृत अवस्था में हो, स्वप्न अवस्था में हो या सुषुप्त की अवस्था में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी आत्मा जागृत है। ये बाकी जो तीन अवस्थाएं हैं, जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति, ये शरीर से संबंधित है, लेकिन सुषुप्ति या ये जो तुरिया है, समाधि है, ये आत्मा की जागृति है। आत्मा अभी हमारी सोई हुई है, लेकिन जब हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं तो आत्मा जाग जाती है, हम अपने आप को पहचान सकते हैं। वैसे देखा जाए तो ये नींद ये तमोगुण है, क्योंकि तमोगुण मतलब विस्मृति, सब भूल जाना। तो तमोगुण के प्रभाव में व्यक्ति का मन मलिन हो जाता है, दूषित हो जाता है। इसलिए जब हम सुबह को उठते हैं, हम स्नान करते हैं, मुंह दांत वगैरह धोते हैं, और जिस जो कपड़े हमें पहने हैं वो भी हम बदलते हैं, और हमारे सोने का स्थान वो भी हम साफ कर देते हैं, ये सब चीजें हमें करनी चाहिए। कई बार आजकल देखा जाता है कि रात जो सोए हुए कपड़ों से ही लोग सब कुछ करते हैं, अपने जगह को साफ नहीं करते हैं, तुरंत स्नान नहीं करते हैं। बल्कि शास्त्रों में बताया जाता है कि जैसे ही व्यक्ति जागता है सपने से, नींद से, उसे कृष्ण के नाम का उच्चारण करना चाहिए, सुंदर श्लोकों का उच्चारण करना चाहिए। जैसे आचार्य, जैसे जीव गोस्वामी इत्यादि बताते हैं कि जब व्यक्ति उठकर तुरंत सुंदर भागवत के श्लोक इत्यादि बोलता है, जैसे जयति जयति जननिवास हो देव की जन्मवाद हो इत्यादि, ऐसे सुंदर श्लोक जो है भागवत के, उनका उल्लेख करते हैं जीव गोस्वामी, तब तमोगुण का प्रभाव दूर हो जाता है। और खास करके जब बुरे स्वप्न आते हैं, उनसे जो अशुभ वातावरण निर्माण हो जाता है वो भी नष्ट हो जाता है। इसलिए सुबह सुबह उठकर हमें सबसे पहले उठते उठते ही हरे कृष्ण महामंत्र बोलना चाहिए या भगवान का स्मरण करना चाहिए। इससे अंदर का शुद्धिकरण होता है और फिर हमें बाहरी रूप से शरीर को, हमारे जगह को भी स्वच्छ करना चाहिए, क्योंकि नींद ये तमोगुण की वस्तु है। नींद की आवश्यकता तो है, क्योंकि अगर शरीर को, मन को आराम हमने नहीं दिया तो हम जी नहीं सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम थोड़ा सा विचार करें तो हमारे मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? देखिए, मनुष्य जीवन का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए मंदिर में आए, हम सत्संग में बैठे, लेकिन फिर भी नींद की लहरें आती रही, नींद के विषय में प्रवचन सुनते हुए भी लहरें आ रही हैं, जा रही हैं। देखिए कितना प्रभावशाली है ये नींद, है ना, कितना तगड़ा है ये शत्रु हमारा। विषय वही चल रहा है लेकिन फिर भी हम सहन नहीं कर पा रहे हैं, इतने तेजी से आ रहा है, बस उसके हम शिकार हो ही जाते हैं। इसलिए आवश्यक तो है, परंतु अगर हमने विचार किया कि हमारे जीवन का उद्देश्य है भगवान की प्राप्ति करना, और ये उद्देश्य केवल मनुष्य जीवन में प्राप्त हो सकता है, किसी भी पशु प्राणी के जीवन में नहीं हो सकता, तो फिर हम ये निष्कर्ष पे सही तरह से पहुंचेंगे कि ये निद्रा जो है समय की बर्बादी है। सही है ना? क्यों? क्योंकि इसमें कितने घंटे बर्बाद हो जाते हैं, इन घंटों में हम भगवान की सेवा कर सकते थे, हम भक्ति मार्ग में प्रगति कर सकते थे, लेकिन क्या करें, शरीर की आवश्यकता है, हमें करना पड़ता है। लेकिन फिर भी मन में हमेशा हमें यह याद रखना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं वास्तव में यह समय की बर्बादी है, इसलिए कम से कम जितना चाहिए उतना ही हमें नींद करना चाहिए। लेकिन जो लोग आध्यात्मिक जीवन में रुचि नहीं रखते हैं, केवल इंद्र तृप्ति उनके जीवन का उद्देश्य है, अपना जीवन का कितना महत्वपूर्ण हिस्सा वो केवल नींद में बिताते हैं। आपके पड़ोस के लोग या आपके रिश्तेदार वगैरह होंगे, आप जानते होंगे वो लोग कितना सोते हैं, घंटे कितने घंटे सोते हैं दिन में, कोई बोल सकते हैं आप? हाँ, 10 घंटा 12 घंटा। और विद्यार्थी समाज में तो क्या कहना है, 10 घंटे 12 घंटे दिन भर सोते रहते हैं, दिन में रात में सोता है, सोना ही सोना है, कितना समय बर्बाद हो जाता है। श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में प्रहलाद महाराज अपने मित्रों को उपदेश देते हैं। वो कहते हैं कि हे मित्रों, सर्वसाधारण मनुष्य 100 साल तक जीता है। 100 साल में हर दिन वो कम से कम आदमी 12 घंटे सोता है। इसका मतलब है कि उसके 100 साल के जीवन की अवधि में 50 साल केवल नींद में चले जाते हैं। बराबर, देखिए 100 साल के 50 साल हमारे केवल सोने में चले जाते हैं। फिर प्रहलाद महाराज विश्लेषण करते हैं, वो कहते हैं कि देखो, जन्म के बाद जो 10 साल होते हैं बचपन के, उसमें बच्चा पूरी तरह से भ्रमित रहता है, कुछ उसको मालूम नहीं होता है ना, इधर उधर भागना घूमना, 24 घंटे की ड्यूटी रहती है माता पिता के, रिश्तेदारों की, कितने लोगों की सेवा वो लेता है बच्चा। एक बच्चे का देखभाल करने के लिए 24 घंटे में क्या नहीं करना पड़ता है। तो पहले 10 साल तो यूं ही बीत जाते हैं, इसके बाद के जो 10 साल हैं वो खेल कूद में क्रिया क्रीड़ा में चले जाते हैं, कोई आध्यात्मिक जीवन भक्ति का प्रश्न नहीं है। तो 20 साल जीवन के ऐसे निकल गए। बुढ़ापे के 20 साल प्रहलाद महाराज कहते हैं बड़े कष्ट के जीवन है, ये साल है। क्यों? क्योंकि इस समय व्यक्ति जो होता है अपने भौतिक क्रियाओं को भी नहीं कर सकता है, आध्यात्मिक क्रिया की बात तो दूर है, उसको खिलाना पड़ता है, पिलाना पड़ता है, शौच में ले जाना पड़ता है, सब कुछ कराना पड़ता है उसके लिए। इस तरह से 40 साल बीत जाते हैं व्यर्थ। 40 साल बीत गए, रहे कितने साल? 60 साल। लेकिन 60 साल में से 50% नींद में गए, मतलब 70 साल 40 और 30 70 साल 100 साल में से निकल गए। अब रहे कितने साल? 30 साल वो 100 साल के जीवन की अवधि में है। लेकिन आजकल लोग कितना जीते हैं? ज्यादा से ज्यादा 70 साल तो वैसे भी गया समय। लेकिन जो व्यक्ति 100 साल जिएगा उसके लिए 30 साल बीत जाते रह जाते हैं। और प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जो व्यक्ति इंद्र तृप्ति करता है, जिसके मन और इंद्रियां वश में नहीं है, वो केवल अपने पारिवारिक जीवन में रुचि लेता है और पागल बन जाता है इंद्र तृप्ति के लिए, पूरी तरह से मोह और भ्रम का शिकार हो जाता है, और इस तरह से उसकी काम वासनाएं बढ़ती जाती हैं और उनको पूर्ण करने के लिए दिन रात वो परेशान रहता है। ऐसी अवस्था में वो भगवान की भक्ति क्या करेगा? इस तरह से सारे 100 साल बीत जाते हैं। आजकल कलयुग में कोई व्यक्ति 100 साल भी नहीं जीता है, 50, 60, 70, 80 ज्यादा से ज्यादा इतने साल जीता है। तो प्रहलाद कहते हैं कि देखो कैसे मनुष्य जीवन बर्बाद हो जाता है, इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वो कम से कम समय सोना ठीक है, लेकिन कम से कम यानी कितना? 2 घंटा सोना चाहिए, 4, 6, 8, 10, 12 कितने घंटे सोने चाहिए दिन में? 6 घंटे। प्रभुपाद जी ने भी ऐसे कहा, प्रभुपाद जी ने कई अलग अलग प्रवचनों में अलग अलग बात कही, लेकिन सर्वसाधारण जो उन्होंने सार कहा कि मनुष्य को चाहिए कि वो 6 घंटा सोए। छह घंटा सोने से इतना नींद काफी है। हाँ, जो बच्चे हैं, जो बीमार हैं, उनकी बात अलग है, लेकिन साधारण जो अच्छे स्वास्थ्य में व्यक्ति है उसको छह घंटे सोना चाहिए। कई प्रवचन में प्रभुपाद ने कहा, ठीक है, अगर किसी को नहीं हो रहा है एक घंटा और, सात घंटे सोना चाहिए। ठीक है, छह घंटा रात को सो जाओ, अगर दिन में एक घंटा सोना सो लो, सात घंटे बस। एक जगह प्रभुपाद जी ने कहा, ठीक है बाबा, छह से आठ घंटा, लेकिन आठ घंटा से ज्यादा नहीं। और आठ घंटा भी किसके लिए? उस व्यक्ति के लिए जो बिल्कुल छह सात घंटे में नींद अपनी समाप्त नहीं कर सकता है। जिसको नींद इतनी सताती है सात घंटे के बाद भी, ठीक है एक घंटा और, ज्यादा से ज्यादा। एक बार प्रभुपाद गोरखपुर में प्रवचन दे रहे थे, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, और उनके कई विदेशी शिष्य थे, और उनके प्रवचन देते समय एक भक्त जो है वो सो रहा था। जैसे प्रवचन में अक्सर होता है ना, कई लोग मस्त रहते हैं नींद में, तो ये शिष्य सो रहे थे। तो प्रभुपाद को थोड़ा गुस्सा आया, उन्होंने बोला, उठो चलो जाके सो जाओ अंदर, ये क्या इधर बैठ के सोना, ये क्या आदत है, ये कहां से सीखी है? दिन भर सोना, 24 घंटे सोना, रात को सोना, दिन में सोना, जहां भी बैठ जाते हो सोने लगते हो। हाँ सही है, हम भक्तों के बारे में देखते हैं, जप के लिए बैठ गए सो गए, पढ़ने के लिए बैठ गए सो गए, प्रवचन में बैठ गए सो गए, आश्चर्य यह है कि खाते खाते सोते नहीं, ट्रेन में बस में गए सो गए, जहां भी जाए सो जाते। तो प्रभुपाद जी कहने लगे, अरे उठते बैठते सब सोना सोना, 24 घंटे तुम लोग सोना चाहते हो, क्या बात है? तो एक दूसरे भक्त ने कहा, प्रभुपाद शायद नींद पूरी नहीं हुई होगी। अरे नींद पूरी नहीं, 10 से 4 क्या नींद काफी नहीं है? और 24 घंटे नींद चाहिए, ठीक है 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे, लेकिन 8 घंटे से ज्यादा जो नींद करता है वो कुंभकर्ण है। तो तुम लोगों को कुंभकर्ण बनना है कि कृष्ण भक्त बनना है? प्रभुपाद ने कहा, कुंभकर्ण 6 महीने सोता था। प्रभुपाद कहने लगे, साल में 6 महीने लगातार सोता रहता था। तो प्रभुपाद कहने लगे, जो लोग दिन में 12 घंटे सोते हैं वो भी साल में 6 महीने सोते हैं, तो वो भी कुंभकर्ण हो गए। तो इस तरह से प्रभुपाद जी ने बड़े कड़ी आलोचना की उन व्यक्तियों की जो ज्यादा सोते हैं, 8 घंटे के ज्यादा। वैसे कुंभकर्ण की बात जब आ जाती है, आप सुनना चाहते हैं कुंभकर्ण के बारे में, उसकी नींद कैसी थी? कुंभकर्ण कैसे ये अवस्था हुई आपको मालूम है? क्यों इतना सोता था कुंभकर्ण? इसके लिए छोटा सा इतिहास बताएंगे आपको रामायण में से। हुआ ये कि विश्रवा नाम का एक ब्राह्मण था, ऋषि, और उनकी पत्नी का नाम था कैकसी, और गलत समय संतान उत्पत्ति के लिए पास आए, इसलिए विश्रवा ने कहा कि देखो तुम्हारे सारे संतान बड़े राक्षस होंगे। तो कैकसी ने क्षमा याचना की, तो फिर विश्रवा ने कहा कि ठीक है, जो आखिरी पुत्र होगा सबसे छोटा वो बड़ा पुण्यवान होगा, लेकिन बाकी सब राक्षस होंगे। तो सबसे बड़ा लड़का हुआ कौन? रावण। लेकिन उस समय उसका नाम रावण नहीं था, बाद में रावण नाम पड़ा। क्यों? जो सबको रुलाता है उसको रावण बोलते हैं, क्यों? जन्म लेते समय खुद रोते आया था, दूसरों को रुलाया नहीं था, इसलिए अभी तक उसका नाम रावण पड़ा नहीं था। लेकिन उसके 10 सर थे, इसलिए विश्रवा ने उनका नाम दशग्रीव रख दिया। ग्रीव मतलब सर, 10 सरों वाला। और उसके बाद कुंभकर्ण का जन्म हुआ। इतना विशाल शरीर, 16 मील मतलब 2 योजन लंबा, और 8 मील मतलब 1 योजन चौड़ा, सबसे बड़ा शरीर उसका सारे पृथ्वी में, इतना विराट शरीर था। और उसके बाद किसका जन्म हुआ? शूर्पणखा, वो तीसरी संतान, बहन दोनों की, और आखिर में हुए विभीषण। वैसे विश्रवा की और एक पत्नी थी जिनसे कि कुबेर का जन्म हुआ था, देवताओं की खजांची। तो एक बार कैकसी ने कुबेर के ऐश्वर्य को देखा और उन्होंने दशग्रीव से कहा कि देखो बेटा, तुम्हारे भाई का ऐश्वर्य देखो, तुम्हें भी ऐसे होना चाहिए। तो रावण या दशग्रीव के मन में ईर्ष्या की भावना हुई, मुझे भी वैसे बनना है। तो अपने दो भाई कुंभकर्ण और विभीषण को लेकर तपस्या करने चले गए गोकर्ण, यहां से बहुत पास में, लंका से आए। उस समय लंका में भी नहीं थे, वो यहां पर आ गए गोकर्ण में, जो कि बहुत पवित्र स्थान माना जाता है। और वहां पर तीनों भाइयों ने 10,000 साल तपस्या की। रावण ने क्या किया, इतनी भयंकर तपस्या की और 1,000 साल बाद एक एक सर को काट के यज्ञ के अग्नि में अर्पण करने लगा। और कुंभकर्ण जो है 10,000 साल तक उसने भी तपस्या की, अपने को गर्मी में अग्नि से घेर के रखा, ठंडी में ठंडे पानी में वो अपने आप को उसने रख दिया। ऐसे उन्होंने दृढ़ व्रत धारण किया 10,000 साल तक। विभीषण ने भी व्रत लिए और 9,000 साल के बाद रावण के या दशग्रीव के 9 सर कट गए थे और 10,000 साल समाप्त हो गए। रावण 10वां सर भी काटने वाला था, अपना ही अर्पण करने वाला था, कि उस समय ब्रह्मा जी आ गए। अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं। हमेशा ब्रह्मा जी शिव जी इनके भक्त ऐसे ही होते हैं, ऐसे कुछ न कुछ हरकत करते रहते हैं, ऐसे घोर कोई जघन्य कार्य करते हैं जो कि उचित नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, अभी एक सर बचा, वो भी मकाटो मत अभी, तो तुम्हें क्या चाहिए वरदान बोलो। तो दशग्रीव ने कहा मैं एक ही चीज से डरता हूं इस जगत में और वो है मृत्यु, तो मुझे अमर बनाइए। तो ब्रह्मा जी ने कहा ये एक वरदान के अलावा कोई और भी चीज मांगो, कुछ भी मांगो, लेकिन ये वरदान मैं नहीं दे सकता क्योंकि मैं खुद अमर नहीं हूं, तो तुम्हें कैसे अमर बना सकता हूं। तो फिर रावण ने कहा ठीक है, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि कोई भी नाग, यक्ष, दैत्य, दानव या देवता या कोई भी मेरी हत्या नहीं कर पाए। जहां तक मनुष्य पशु हैं, उनको तो मैं बिल्कुल रास्ते में पड़े हुए घास के तिनके बराबर समझता हूं, उनसे मुझे कोई डर नहीं है, तो इनसे मुझे मृत्यु से आप सुरक्षा दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, और कहा कि मैं तुम्हें और दो वरदान दूंगा जो तुमने पूछे नहीं है, फिर भी मैं देता हूं। एक कि तुम्हारे बाकी के 9 सर आ जाएंगे फिर से तुम्हारे पास, तुम्हें पूरे 10 के 10 सर मिल जाएंगे, और दूसरा कि तुम जो रूप चाहो वो धारण कर पाओगे इच्छा के अनुसार। तो रावण तो बड़ा खुश हो गया। फिर आई कुंभकर्ण की बात, उसके पहले विभीषण। विभीषण को पूछा ब्रह्मा जी ने क्या वरदान चाहिए तुमको, तो विभीषण ने कहा कि मुझे एक ही वरदान चाहिए कि मेरे जीवन के हर परिस्थिति में, चाहे वो कितने भी कठिनाई की परिस्थिति क्यों ना हो, मैं धर्म के मार्ग से हटू नहीं, इतना ही मुझे आप ये वरदान दीजिए। देखिए विभीषण और रावण में क्या अंतर। तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि तुम्हारे मन में कभी अधर्म प्रवेश ही नहीं कर सकता है, तो मैं खुशी से तुम्हें यह वरदान देता हूं। और फिर कुंभकर्ण आए, और जब ब्रह्मा जी कुंभकर्ण को के साथ बोलने वाले थे, उस समय ब्रह्मा जी के साथ में जो ऋषि देवता आए थे उन्होंने ब्रह्मा जी को रोका, उनको थोड़ा अलग ले गए, कहने लगे ब्रह्मा जी इसको जरा सोच समझ के वरदान दीजिए, क्यों, क्योंकि इसने जब से जन्म लिया है बहुत शैतानी की है, जन्म लेते लेते ही सारे ब्रह्मांड में घूमने लगा और उसने आज तक इस उम्र में भी 7 अप्सराओं को मारकर खा लिया है, इंद्र के 10 सेवक थे उनको भी मार के खा लिया है, न जाने कितने ऋषि मुनियों को, मनुष्यों को भी खा लिया है उसने, और ये सब वरदान न होते हुए। और अगर वरदान देंगे तो फिर क्या होगा, हम बोल नहीं सकते, हमारी भी मृत्यु हो जाएगी। तो आपसे निवेदन यह है कि एक वरदान के बहाने या वरदान को निमित्त बनाकर उसे आप मोहग्रस्त कर दीजिए, मोहित कर दीजिए उसको। तो ब्रह्मा जी ने बड़े गहराई से सोचना शुरू किया देवताओं के प्रस्ताव के ऊपर। तो ब्रह्मा जी ने अपने मन में अपने पत्नी को बुलाया, उनकी पत्नी का नाम क्या है, सरस्वती, जो विद्या या वाचा की देवी है। तो तुरंत सरस्वती देवी हाजिर हो गए ब्रह्मा जी के सामने। हाँ प्रभु कहिए, हम क्या सेवा कर सकते हैं? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि कुंभकर्ण के मुंह में तुम वाचा बन जाना शब्द। तो सरस्वती देवी को समझ गई ब्रह्मा जी क्या चाहते हैं। फिर ब्रह्मा जी ने कुंभकर्ण से पूछा कि हे कुंभकर्ण, क्या वरदान चाहिए? मांगो तुम्हारी मन की इच्छा। तो कुंभकर्ण के मुंह से सरस्वती देवी बोल रही थी ना, तो कुंभकर्ण बोलने लगा, अगर आप मेरी इच्छा पूर्ण करना चाहते हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि मैं हजारों हजारों साल तक सो जाऊं। और तुरंत ब्रह्मा जी ने एक क्षण बर्बाद नहीं किया, तुरंत कह दिया तथास्तु। और ब्रह्मा जी देवताओं को लेकर चले गए। जैसे ब्रह्मा जी चले गए, कुंभकर्ण के होश ठिकाने आ गए। अरे ये मैंने क्या बोल दिया, कैसा वरदान मांगा मैंने, मेरे होश ठिकाने नहीं थे क्या, ऐसा वरदान कोई मांगेगा, शायद ये देवताओं की चाल है। लेकिन तब तक क्या करें, ब्रह्मा जी ने वरदान दे ही दिया था। इस तरह से कुंभकर्ण को लंबी नींद निकालने की का जो वरदान है, वरदान या शाप कहिए जो भी कहिए, वो मिल गया। इसके बाद में कुंभकर्ण को बड़ी नींद आने लगी, ऐसी नींद जैसे अभी कई बार भक्तों को भी आती है क्लास के अंदर, ऐसी जबरदस्त नींद आने लगी। तो जाकर रावण से कहने लगा कि मेरे लिए कोई अच्छा मकान बनाइए। अभी अच्छा मकान बोले तो एक दो घंटे की बात नहीं थी कुंभकर्ण के लिए, इतना बड़ा शरीर था। तो रावण ने बड़ा सा घर बनाया, महल बनाया, 16 मील लंबा, 8 मील चौड़ा, और वो भी जमीन के नीचे, और उसमें सोने के खंभे, नाना प्रकार के हीरे पन्ने रत्न से सुशोभित ऐसा घर बनाया, ऐश्वर्यशाली घर। और उसमें जाकर कुंभकर्ण सोने लगा आराम से। और उसके बाद में कौन सी घटनाएं हुई कुंभकर्ण को क्या मालूम, तो सोया हुआ था। सीता का भरण हुआ, ये हुआ, बहुत सारी चीजें हो गई। फिर जब रामचंद्र भगवान वानर सेना को लेकर लंका पहुंचे और युद्ध आरंभ हुआ, तो वानर सेना ने बहुत सारे बड़े बड़े राक्षस सेनापतियों को मार डाला। और जब रावण स्वयं आ गए वहां पर युद्ध भूमि पर, तो श्री रामचंद्र ने रावण को आसानी से हरा दिया और फिर बड़ा उनको अपमानित करके उनको छोड़ दिया। कहा जाओ, अभी तुम थके हुए हो, अभी मैं तुमको क्या मारूंगा, तुम विश्राम करो, कल मेरे साथ युद्ध करने आ जाना। इतना बड़ा अपमान रावण के लिए। तो रावण बहुत दुखी होकर वापस चला गया। उसने सोचा कल तो कुछ करना चाहिए, अभी मुझे मेरे छोटे भाई कुंभकर्ण को बुलाना चाहिए। लेकिन कुंभकर्ण को नींद तो क्या है, अजब की नींद है। तो उन्होंने राक्षसों को बुलाया, जाओ जगाओ कुंभकर्ण को और बोलो कि अब युद्ध में जाना है। तो सारे राक्षस गए कुंभकर्ण के निवास स्थान में। कितने राक्षस गए उनको जगाने के लिए, हम जब कहते हैं अरे प्रभु वो भक्त सोए हुए जरा उनको जगा के आना, एक भक्त जाता है जगा के चले जाता है। लेकिन कुंभकर्ण को जगाने के लिए कितने लोगों को जाना पड़ा, 10,000। 10,000 हृष्ट पुष्ट हट्टे कट्टे राक्षस गए वहां जगाने के लिए। जैसे दरवाजा खोला, इतना तूफान जैसा जो हवा है वो आया, सब उड़ गए। तो वो क्या थी, कुंभकर्ण की सांस, इतना बड़ा शरीर। सारे राक्षस जब उड़ गए मानो बड़ा तूफान आया हो। फिर किसी न किसी तरह से सब उन पहलवान राक्षसों ने अपने आप को संभाल लिया, किसी न किसी तरह से बड़े कठिनाई से अंदर चले गए और कुंभकर्ण के कमरे में आ पहुंचे। और जैसे ही कुंभकर्ण के कमरे में आए तो देखा कि कुंभकर्ण किस तरह से सो रहे हैं, आराम से नींद है। तो उस समय उन्होंने सबसे पहले तैयारी की, क्योंकि वो जानते थे कि कुंभकर्ण को नींद से जागेंगे बड़े निराश बड़े गुस्से होकर जागने वाले हैं। इसलिए सबसे पहले उनको शांत करने के लिए उन्होंने सारी चीजें की। क्या किया, बड़े बड़े मटके रखे मांस के, शराब के, खून के, राक्षस खून पीते हैं ना, वो सब सामग्री वहां रख दी। और फिर उनके शरीर पे चंदन का लेप लगाना शुरू किया और फिर उनका गुणगान करना, सुंदर गीत बजाना शुरू किया। लेकिन इन चीजों से थोड़े कुंभकर्ण जागने वाले थे, तो फिर उन्होंने सोचा कि इन चीजों से कुछ काम बनने वाला नहीं है। तो फिर क्या क्या करना आरंभ किया, वाल्मीकि मुनि वर्णन करते हैं कि कई राक्षस के अलग अलग टीम बन गए दल। कई लोग चिल्लाने लगे, रोने लगे, जोर जोर से गर्जना करने लगे, हा हो उनके कान के पास जाकर बुलंद आवाज से, बड़े जोर से आवाज से। थोड़े लोगों ने क्या किया, वो बाजा बजाया, किसी ने शंख बजाया, केवल उनके कान के पास में जाकर। कोई एक कान के पास हजारों राक्षस, दूसरे कान के पास और हजार राक्षस, सब बाजा बजा रहे हैं, ढोलक बजा रहे हैं, घंटी बड़ा बड़ा बजा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कोई ताली मार रहा है, सब हंगामा चल रहा है वहां। लेकिन इतना सब होते हुए कुंभकर्ण आराम की नींद सोए हुए थे। और फिर उन्होंने सोचा इसमें काम नहीं आता, तो कुंभकर्ण के हाथ पैर हिलाने लगे। वो तो मालिश हो गया कुंभकर्ण का, वो थोड़े कुछ जागने वाले थे। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि हमारे चिल्लाने से कुछ होगा नहीं, अब आक्रमण ही करना होगा। तो उन्होंने नाना प्रकार के हथौड़ियां लिए, हथौड़ी और गदा, और उनसे मारने लगे। सब पहलवान थे बड़े बड़े, उनकी ताकत कोई साधारण ताकत नहीं थी, जोर जोर से शरीर पे मारने लगे। कुंभकर्ण के ऊपर कोई असर ही नहीं। और ऐसे जब मार रहे थे, उनको बहुत तकलीफ हो रही थी। वाल्मीकि मुनि वर्णन करते हैं कि ये राक्षस सागर की लहरों की तरह दिख रहे थे। आप समुद्र के तट पर गए हैं, कभी लहरें समुद्र में जाती हैं फिर से आती हैं, उसी तरह से जब कुंभकर्ण का सांस बाहर आता तो ये सब भूम करके चले जाते और फिर से अपना काम करने आ जाते, फिर से सांस आ जाता फिर से चले जाते। तो ऐसे आगे पीछे आगे पीछे ये बेचारे राक्षस प्रयत्न करते जा रहे थे। और उसके अलावा कुंभकर्ण के मुंह से वो खून की, मांस की, शराब की दुर्गंध आ रही थी। तो ये बेचारे, इनका हालत खराब हो गई इनकी। लेकिन क्या करें, आदेश है। तो ऐसे और करते करते भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। और फिर उन्होंने क्या किया, हाथी, घोड़े, ऊंट, गधे, इन सब को ले आए और कुंभकर्ण के शरीर के ऊपर छोड़ दिया। वो सब चल रहे थे पशु, लेकिन फिर भी कुंभकर्ण के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। फिर उन्होंने बड़े बड़े झाड़ लिए, कुंभकर्ण के पैरों से मारने लगे, फिर भी कोई असर नहीं। आखिर में इतने निराश हो गए, गुस्से हो गए सारे राक्षस, थोड़े राक्षस निकाल के उनके बाल ही खींचने लगे, कोई उनको कान चबाने लगे, फिर बाल्टी बाल्टी भरकर पानी उनके कान के अंदर डालने लगे, क्योंकि कान भी बहुत बड़ा था ना। लेकिन इतना बाल्टी भरकर कान में पानी डाला, कोई असर नहीं। तो राक्षस बड़े हैरान हो गए। फिर उन्होंने क्या किया, 1000 हाथी लाए, 1000 हाथियों को, पागल हाथियों को शराब पिलाकर छोड़ दिया उनके ऊपर। फिर सब वो कुंभकर्ण के शरीर के ऊपर जब चल रहे थे, उस समय कुंभकर्ण थोड़ा हिलने लगा और फिर थोड़ा सा जाग गया, मानो कि किसी ने हल्के से उनको जगाया हुआ हो। फिर यूं ऐसे खोला, आंख खोल दिया जमाई की, और धीरे से उठने लगे। उधर राक्षस पहाड़ के पहाड़ फेंक रहे थे उनके ऊपर, इसलिए उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उठा, लाल लाल आंखों से ऐसे देखने लगे, सारे राक्षस कांपने लगे। वो ऐसे लग रहे थे मानो कि मूर्तिमान काल, जो कि सृष्टि के संहार के समय जैसे दिखती है वैसे। फिर उन्हें देखा, हाँ मांस है, खून है, शराब है, तुरंत पकड़ लिया, सब खाना पीना शुरू कर दिया। फिर थोड़ा मन शांत हुआ, फिर सारे राक्षसों को साहस हुआ उनके सामने आने के लिए, हाथ जोड़ा। और फिर कुंभकर्ण ने पूछा, मुझे ऐसे समय के पहले जगाने का क्या प्रयोजन? शायद एक ही कारण हो सकता है कि ऐसी कोई भीषण आफत हमारे राज्य में आ गई होगी जिसका सामना केवल मैं कर सकता हूं, इसलिए होगा, नहीं तो किसी को साहस नहीं होगा मेरे, मुझे जगाने के लिए। बताओ क्या समस्या है? तो उन्होंने बताया। फिर जब जाग गए तो खबर पहुंच गई रावण के पास। मंत्रियों ने रावण से पूछा कि कुंभकर्ण को हम यहां ले आएं या युद्ध भूमि में भेजें? तो नहीं, पहले यहां पर ले आओ, लेकिन उसके पहले अच्छा खिलाओ पिलाओ। तो राक्षसों ने बहुत सारा मांस उनके सामने रखा, खून के बाल्टी रखे, 200 शराब के बाल्टियां रखी, और कुंभकर्ण ने बहुत ही जल्द खाना पीना सब कर लिया। हृष्ट पुष्ट होकर फिर से वो कमरे के बाहर निकल आए। वानर सेना बाहर खड़ी थी। वानर सेना ने कुंभकर्ण को देखा, वो सब भागने लग गए इधर उधर। अरे ये क्या, इतना विराट शरीर, पास चला गया। उस समय प्रभु रामचंद्र विभीषण के साथ खड़े थे। प्रभु रामचंद्र भी आश्चर्यचकित हो गए। विभीषण से पूछा, अरे विभीषण ये कौन है? लगता है कि कोई दूसरा मेरु पर्वत आ गया है यहां पर लंका में। तो फिर विभीषण ने कहा, ये मेरा बड़ा भाई है, विश्रवा मुनि के दूसरे पुत्र, इसका नाम है कुंभकर्ण, बड़ा शक्तिशाली है, जन्म से ही ये बड़े ऋषि मुनियों को मनुष्यों को खाने लगा है, इसने यमराज को भी हरा दिया है युद्ध में। और ऐसे हुआ कि जब जन्म के बाद वो लोगों को सारे ब्रह्मांड में हैरान कर रहा था, तो शिकायत पहुंची इंद्रदेव तक, और इंद्रदेव ने आक्रमण किया गुस्सा होकर, और उस समय अपना वज्र जो अस्त्र है वो फेंका, कुंभकर्ण वहां बेहोश हो गया। लेकिन होश में आने के बाद कुंभकर्ण इतना गुस्सा हो गया कि उसने इंद्रदेव की जो हाथी है ऐरावत, उसका एक जो दांत है वो तोड़ दिया और उसी से इंद्र के ऊपर आक्रमण कर लिया। और इंद्र को बहुत दुख हुआ, बहुत कष्ट हो गया, बहुत दर्द हुआ। तो इंद्र भागते हुए ब्रह्मा जी के पास गए कि ये तो नाक में दम हो गया सारे ब्रह्मांड के लिए, ब्रह्मा जी कुछ कीजिए। तो ब्रह्मा जी ने ध्यान किया, ध्यान में देखा कि अरे ये तो भयंकर बात है, ये कुंभकर्ण कोई साधारण समस्या नहीं है। तो कुंभकर्ण के सामने आए और उन्होंने कहा कि अरे कुंभकर्ण, तुम्हारा ये रूप जो है वो सृष्टि के संहार के लिए हमने बनाया है, सृष्टि के पालन के समय नहीं, इसलिए सारे प्रजा के कल्याण के लिए मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम सो जाओ। तो उस समय रावण सामने खड़ा था पास में, ब्रह्मा जी से कहने लगा, नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल उचित नहीं है हे ब्रह्मा जी, क्योंकि ये भी आपका प्रपौत्र है, आपके पुत्र के पुत्र का पुत्र है, और ऐसे एक वृक्ष को काटना जबकि वो फल देने के लिए तैयार है ये उचित नहीं है, इसलिए आपने जो वरदान, जो शाप या वरदान उसको दिया है ठीक है, लेकिन कम से कम उसे साल में थोड़ा समय तो जागृत अवस्था में रहने दीजिए। फिर ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, कुंभकर्ण लगातार 6 महीने सोएगा, फिर एक दिन जागेगा, फिर से 6 महीने सोएगा, साल में एक दिन वो जागृत अवस्था में रहेगा, और इस एक दिन में उसको जहां जाना है, क्या खाना है वो खाने दो, लेकिन 6 महीने सोना पड़ेगा। इसके बाद कुंभकर्ण सोने लगा। तो ये है कुंभकर्ण की नींद। तो हमें प्रभुपाद की बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि जो व्यक्ति ज्यादा सोता है कुंभकर्ण के बराबर है, इसलिए हमें इस कुंभकर्ण रूपी नींद से हमें हमेशा होशियार सावधान रहना चाहिए। तो ये नींद को वश में करने के लिए हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए, जानना चाहिए कि ये तो हमारा शत्रु है, कोई साधारण शत्रु नहीं है, क्योंकि कृष्ण भक्ति में भी कितने अड़चन हमारे रास्ते में पैदा कर देता है। वैसे अगर कोई व्यक्ति ज्यादा सोता है तो उसको अगले जन्म में कोई ऐसे पशु का शरीर मिलेगा जिसमें कि वो बहुत सो पाएगा। प्रभुपाद जी समझाया करते हैं कि भालू जो होता है वो बहुत सोता है, लगातार 6 महीने सोता है, खास करके जो पृथ्वी के उत्तर भाग में जो है जहां बर्फ है सब जगह, उनको पोलार बेर कहते हैं, वो गर्मी के समय सो जाते हैं 6 महीने, उठते नहीं है। तो उसी तरह से अगर कोई मनुष्य जीवन को प्राप्त करके ज्यादा सोना चाहे तो मनुष्य जीवन क्यों बर्बाद करें, उसको ऐसे भालू का शरीर मिल जाए तो भालू का शरीर मिलने के बाद जितना चाहे वो सो सकता है, 6 महीने सो सकता है। इसलिए आदमी को चाहिए कि वो हमेशा बहुत सावधान रहे, या किसी भी हर अवस्था में सतर्क रहे कि नींद उसको हराए नहीं। तो अगर हम कुंभकर्ण की तरह नहीं बनना चाहते हैं तो किसकी तरह बनना चाहिए, किसके पद चिन्हों में चलना चाहिए, हमें क्या बनना है? आखिर कृष्णदास बनना है, हमें कुंभकर्ण दास या निद्रा दास नहीं बनना है। तो फिर अगर हम महान भक्तों के पद चिन्हों में चलें, जैसे कि वृंदावन के 6 गोस्वामी, तो क्या ये उचित रहेगा? वृंदावन के 6 गोस्वामी इन्होंने अपने इंद्रियों के ऊपर पूरी तरह से संयम कर लिया था। निद्रा हार विहार का आदि विजित हो। बताया जाता है कि उन्होंने निद्रा आहार विहार इन सब को जीत लिया था। षड गोस्वामी ये दिन में ज्यादा से ज्यादा एक घंटा या दो घंटे सोते थे और कभी कभी इतना भी करना भूल जाते थे, भूल जाते थे सो जाना। हम कभी भूलते हैं, सोने को भूल जाते हैं, खाने को भूल जाते हैं, लेकिन देखिए कृष्ण भक्ति का प्रभाव इतना शक्तिशाली है कि षड गोस्वामी खाना पीना ही भूल जाते थे। लेकिन क्या हमें उनके पदचिन्हों में चलना चाहिए? हाँ, पदचिन्हों में चलना चाहिए, लेकिन उनकी नकल नहीं करनी चाहिए। पदचिन्हों में चलने का मतलब है कि उनसे प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए कि कैसे हमें भी अपने नींद को थोड़ा कम करना है। नकल करना मतलब क्या, हम भी सोचेंगे हम एक घंटा सोएंगे, लेकिन एक घंटे नींद से क्या होगा। कई बार ऐसे देखा जाता है कि भक्त भी ऐसे बहुत तपस्या करना चाहते हैं। एक भक्त हम जानते हैं जो सोच रहे थे कि नींद बड़ी मुसीबत है, हम केवल एक घंटा सोएंगे। तो उस एक घंटा सोने के लिए उन्होंने क्या नहीं किया, और आखिर में उनकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि डॉक्टर ने बोला उनको आपको ज्यादा सोना ही पड़ेगा। कई बार ऐसे हो जाता है कि भक्त लोग जब कम सोते हैं तो दिन भर फिर आंख ऐसे आधे खुले आधे बंद रहते हैं, फिर जहां भी बैठ जाते हैं जैसे प्रभु को कहा बैठ जाते हैं सो जाते हैं। फिर ऐसे एक घंटे दो घंटे चार घंटे की नींद से क्या फायदा है। अगर हमने ठीक से जितना शरीर को आवश्यक है उतना नींद नहीं लिया और बाकी समय 20 घंटे 21 घंटे हम जागते सोते रहे, कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाए, तो ऐसे तपस्या का कोई मतलब नहीं है। एक भक्त बता रहे थे कि उन्होंने भी कम नींद ली थी और वो गाड़ी चला रहे थे और गाड़ी चलाते चलाते उनको थोड़ी नींद आ गई और उस समय जान बच गई, बस बाल बाल बच गए वो। उससे उनको पता चल गया कि नींद से भी हमें खेलना नहीं चाहिए, जितना शरीर को आवश्यक है उतना अवश्य हमें नींद लेना चाहिए। इसलिए भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। जो लोग योगी हैं या योगी बनना चाहते हैं, जो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को साधकों को चाहिए कि उनका आहार, उनका विहार, उनकी निद्रा, उनका स्वप्न, उनके कर्म सब संतुलित होने चाहिए। संतुलित मतलब ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं। प्रभुपाद जी ने हमारे लिए स्टैंडर्ड बता दिया है, 6-7 घंटे ठीक है, बस इतना हम इतना अगर हम करेंगे तो हम भक्ति में भी अच्छी तरह से आगे प्रगति कर सकते हैं। लेकिन केवल 6 घंटे सोना इतना काफी नहीं है, यह भी महत्वपूर्ण है कि हम किस समय सोते हैं। बताया जाता है कि अगर कोई व्यक्ति जल्दी सो जाता है 6 घंटे, समझ लीजिए वो रात को 9 बजे सो गया, ठीक 9 बजे सोकर 6 घंटे नींद कर ली उसने, सुबह 3 बजे उठ गया, तो उसकी 6 घंटे की नींद हो गई। और दूसरा आदमी है वो भी 6 घंटे की नींद लेता है लेकिन रात को 1 बजे सोता है और सुबह 7 बजे उठता है, तो जो नींद का आराम या जो जितना फ्रेश पहले व्यक्ति को लगेगा दूसरे को नहीं लगेगा। क्योंकि जितना जल्दी हम सोएंगे, जब रात अभी इतनी बढ़ी हुई नहीं होती है, उस समय नींद और अच्छी लगती है। लेकिन जितना ज्यादा देर से हम सोएंगे तो प्रातः काल के समय ब्रह्म मुहूर्त के पहले जो समय है उसमें जो नींद आएगी वो अच्छा नहीं होगा। इसलिए हमें चाहिए कि रात को हम जल्दी सो जाएं। जल्दी सोकर जल्दी उठने से नींद भी अच्छी आती है। और इसके अलावा यह देखा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त का समय, मतलब सूर्य 1.5 घंटे के पहले जो समय होता है उसको जो ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, इस समय आध्यात्मिक क्रियाओं को करने से बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। वही आध्यात्मिक क्रियाएं जैसे जप है, वाचन है, श्रवण है, कीर्तन है, यह ब्रह्म मुहूर्त के समय बहुत ज्यादा शक्तिशाली रहते हैं। क्योंकि उस समय सत्वगुण का समय होता है। जैसे दिन बीतता जाता है रजगुण आ जाता है और फिर रात के समय तमोगुण आ जाता है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त के समय जो हमें लाभ मिलेगा हमारा जप तप करने में, वो बाद में उतना लाभ नहीं मिलेगा। ब्रह्म मुहूर्त के समय हमें उठना चाहिए, उठकर नहा धो लेना चाहिए, अपने आप को स्वच्छ करके फिर हमें आध्यात्मिक क्रियाओं में, भक्ति की क्रियाओं में लगना चाहिए। स्वयं भगवान कृष्ण ने इसके लिए हमारे सामने एक आदर्श रखा है। जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका में हुआ करते थे तो आप जानते हैं कितने समय सुबह को उठते थे, कोई बता सकते हैं? ब्रह्म मुहूर्त के समय कोई बोल रहे हैं, और 4 बजे, और कोई? सूर्योदय के 3 घंटे पहले। ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय के 1.5 घंटे पहले, मतलब ब्रह्म मुहूर्त के भी 1.5 घंटे पहले वो उठते थे भगवान कृष्ण। जैसे मुर्गी की कू कू कुकुड़ कू आवाज आती थी, भगवान सुनते थे तुरंत उठ जाते थे। और भगवान श्री कृष्ण की कितनी रानियां थी? 16,108, और कितने महल? उतने ही। और हरेक महल में कृष्ण होते, वही श्री कृष्ण, उन्होंने अपने आप को विस्तारित किया होता, और हरेक महल में श्री कृष्ण ब्रह्म मुहूर्त के 1.5 घंटे पहले उठ जाते हैं। और फिर सारे रानियां कोसने लगती मुर्गियों को, कृष्ण को जगा दिया तो कृष्ण उठ जाते, स्नान करते और फिर अपने धार्मिक क्रियाओं को आरंभ करते हैं। तो ये सब खास करके गृहस्थ भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान कृष्ण ने स्वयं हमें सिखलाया है कि कैसे हमें जल्दी उठना चाहिए, जल्दी उठकर नहा धोकर हमें आध्यात्मिक कार्य करने चाहिए। प्रभुपाद जी एक प्रवचन में बोल रहे थे कि आजकल क्या होता है, लोग उठते हैं नींद से, बिस्तर में ही बेड टी पीते हैं। कोई उनको नौकर चाकर कोई चाहिए नहीं हो तो फिर और कोई आके उनको देना चाहिए चाय, वो बिस्तर में लेटे लेटे, स्नान नहीं, मुंह नहीं धोया, कुछ नहीं, बेड टी पियेंगे। इस तरह से प्रभुपाद कहने लगे, कोई स्वच्छता नहीं, कोई पवित्र करने की कोई नियम विधि विधान नहीं, इसलिए ऐसे अवस्था में बच्चे भी उनके पीछे पीछे जाते हैं और इसलिए सारा समाज जो है नरक की ओर जा रहा है। इसका मतलब है कि हमें चाहिए कि रात रात तक टीवी न देखते हुए, बल्कि टीवी को घर से ही निकालकर जल्दी सो जाएं, जल्दी उठें, क्योंकि जो लाभ हमें मिलेगा, जो रात को आराम हमें उन 6 घंटों में मिलेगा, वो देर सोने से नहीं मिलेगा, और जो लाभ हमें मिलेगा जल्दी उठने से, वो दिवस के अन्य समय पे हमें नहीं मिलेगा। प्रभुपाद जी जल्दी उठने के बारे में इतना जोर देते थे कि एक बार उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में, भक्ति में गंभीर है, सिंसियर है, तो वो जल्दी उठेगा। ये परीक्षा है, वो कहने लगे। एक परीक्षा, अगर आप जानना, जांच करना चाहते हो, परीक्षा करना चाहते हो कि कोई भक्त भक्ति में सिंसियर है, सीरियस है कि नहीं, तो उसको पूछिए कितने बजे उठते हो सुबह है? हम ये प्रश्न अपने आप को कर सकते हैं, प्रभुपाद की वाणी है, प्रभुपाद हमको परीक्षा दे रहे हैं, अपने आप को परीक्षा देना, हम कितने बजे सुबह उठते हैं? 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे? प्रभुपाद की ये एक का एक वचन बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद कहते हैं दिस इज द टेस्ट, ये परीक्षा है। जितना आदमी सिंसियर है, गंभीर है भक्ति मार्ग में, इसकी परीक्षा इस बात से हो सकती है कि वो सुबह को कितने जल्दी उठता है। हाँ, वैसे कई लोग सुबह जल्दी उठते हैं, जिनको फैक्ट्री की ड्यूटी रहती है, इनको इधर उधर जाना पड़ता है, वो भी जल्दी उठते हैं। लेकिन केवल जल्दी उठना नहीं, जल्दी उठ के नहा धो के जप के लिए, कीर्तन के लिए बैठ जाना, ये जरूरी है। इस तरह से न केवल 6 घंटे सोना, लेकिन जल्दी सोना। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा आध्यात्मिक जीवन बड़े अच्छे ढंग से आगे बढ़ेगा। तो ये निद्रा नाम का जो कुंभकर्ण राक्षस है, इसको वश में कैसे किया जाए? सबसे पहले प्रभुपाद बताते हैं कि हमको आध्यात्मिक जीवन की गंभीरता को समझ लेना चाहिए। हमें यह दृढ़ता होनी चाहिए, यह श्रद्धा विश्वास होना चाहिए कि यह भक्ति मार्ग ही हमारे लिए सबसे उत्तम मार्ग है और हमें इसी जीवन में भगवान के धाम में जाना है। ये हमारा अंतिम जीवन होना चाहिए। अगर ये तीव्र इच्छा हमारे अंदर रही, ये ज्ञान रहा हमारे जीवन के उद्देश्य का कि हमारा जीवन केवल भगवान की भक्ति करने के लिए है, कितना बड़ा सौभाग्य हमारा है और इसी जीवन का पूरा पूरा फायदा उठाकर हमें शुद्ध भक्त होना है, इसी जीवन में भगवत धाम वापस जाना है। ये अगर दृढ़ता हमारी रही तो हम इस नींद को वश में कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ढीले रहे, चलो भक्ति करेंगे, होगा करेंगे, धीरे धीरे से करेंगे, कोई बात नहीं, तो फिर नहीं हो पाएगा। हमें पक्का रहना कि नहीं, हमको आध्यात्मिक जीवन भक्ति करना है, किसी भी हालत में करना है। ये इतने पक्के हम हुए तो नींद वश में हो जाएगी। प्रभुपाद कहने लगे, जो कितने सारे भौतिक व्यक्ति हैं उन्होंने भी नींद को जीत लिया। उन्होंने उदाहरण दिया एक राजा का जिसका नाम था नेपोलियन। नेपोलियन का नाम सुना आपने? नेपोलियन फ्रांस देश यूरोप में वहां का राजा था, 200-300 साल पहले शायद वो रहता था। प्रभुपाद बताते हैं कि ऐसे बताया जाता है नेपोलियन के बारे में कि वो बिस्तर में कभी सोते ही नहीं थे। कब सोते थे? एक युद्ध भूमि से दूसरे युद्ध भूमि जब जाते घोड़े के ऊपर बैठकर, तो घोड़े के ऊपर ही जितना नींद आती उतना सोते और उसे काम चला लेते। वो गांधी जी की बात भी करते, गांधी जी भी अपने नींद को उन्होंने वश में कर लिया था। वो कब सोते? जब गाड़ी में बैठकर इधर से उधर जा रहे हैं या रेलगाड़ी में बैठकर एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जा रहे हैं, उस समय सो जाते। उस समय जितनी नींद आती उसमें काम चला लेते थे। उसी तरह से उन्होंने उदाहरण दिया सुभाष चंद्र बोस इत्यादि ऐसे लोगों का, जिन्होंने कोई भौतिक कारण के लिए इतना उत्साह था, इतनी दृढ़ता थी, इतने पक्के थे उनके भौतिक उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए कि उन्होंने अपने नींद को जीत लिया। तो प्रभुपाद कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति भौतिक इच्छा की पूर्ति के लिए अपने नींद को वश में कर सकता है तो भक्त क्यों नहीं कर सकता? केवल चाहिए कि उसको उतना ही दृढ़ और पक्का होना चाहिए इसके बारे में, तब वो नींद को जीत सकता है। कितने सारे व्यापारी हैं, अगर उनको बताया जाए आपको 2 दिन में 10 लाख मिलेंगे, लेकिन 2 दिन आपको नींद सोना नहीं है, अरे वो 2 दिन क्या, एक हफ्ता सोए बिना निकालेगा, 10 लाख मिल रहा है तुरंत क्या नहीं करेगा, खाना पीना सोना सब भूल जाएगा। तो जब हम किसी चीज के प्रति ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं, उसको पाने की इतनी तीव्र इच्छा होती है, उत्कंठा होती है हमारे अंदर, तब हम नींद को भी त्यागने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी बात है, हम नींद को कैसे जीत सकते हैं, अभी हम चर्चा कर ही चुके हैं कि हमें जल्दी सोना चाहिए। जल्दी सोने से हमें बहुत लाभ मिलेगा। वैसे अगर हमें नींद को कंट्रोल करना है, और एक प्रैक्टिकल चीज हमारे लिए बहुत लाभदायक है, ये तीसरी बात, वो क्या है कि हमारे भोजन को कंट्रोल करना, नियंत्रण में लाना। अगर हम ज्यादा खाएंगे अति आहार तो ज्यादा सोएंगे, और ज्यादा सोएंगे तो मन में वासनाएं भी बढ़ जाएंगी। लेकिन हमने कम खाया, नींद भी कम, मन भी शांत। लेकिन हां, जरूरत से जरूरत जितना जरूरी है उतना खाना तो चाहिए। अगर हमने कृत्रिम रूप से उपवास करने का प्रयास किया तो हम बीमार होकर हम मर जाएंगे। इसलिए चाहिए कि जितना शरीर को बनाए रखने के लिए हमें खाना पीना है, सोना है, उतना करना चाहिए, लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं करना चाहिए। और नींद को वश में करने के लिए आखिरी जो रास्ता है, सबसे महत्वपूर्ण, वो है कि हम भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाएं, बड़े तीव्रता से उनके चरणों में प्रार्थना करें कि हे भगवान, बैठे खड़े सोए हमें नींद आती है, प्रवचन में बैठे हैं, नींद के बारे में सुन रहे हैं, फिर भी हमें नींद आती है, तो हे राधा गोकुलानंद, कृपया इस नींद, इस कुंभकर्ण को जो हमारे मन में है, इस कुंभकर्ण को आप वध आप कर दीजिए। जैसे आपने रावण के भाई कुंभकर्ण का वध लंका में किया था, वैसे इस हृदय को लंका समझिए और हमारे हृदय में जो कुंभकर्ण है उसको मार डालिए। तीव्रता से उनके प्रति प्रार्थना करना और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तुमके मनुष्य की अवधि ज्यादा थी, सौ ब्रह्मा जी के 100 साल करोड़ों साल हैं और चींटी के 100 साल बहुत कम है। उसी तरह से हर एक युग में व्यक्ति का पूरा संपूर्ण जीवन जो है उसको हम 100 साल के बराबर समझ सकते हैं, लेकिन सालों की दृष्टि से देखा जाए तो कितने हजारों साल हो सकते हैं। तो सत्ययुग में लोग 1,00,000 साल जीते थे, त्रेता युग में 10,000 साल, द्वापर युग में 1,000 साल, कलयुग में 100 साल। और कोई प्रश्न?
हरे कृष्ण, नींद को एज के ऊपर कुछ कितना नींद करने का कुछ बाधा है?
नींद क्या ये आयु से संबंधित है, ये प्रश्न है? हाँ थोड़ा बहुत, जैसे बच्चा होता है, छोटा बच्चा, उसको तो ज्यादा नींद चाहिए ही। वैसे भी प्रहलाद ने पहले 10 साल तो निकाल ही दिए हैं ना, तो बचपन में तो थोड़ी ज्यादा नींद तो चाहिए, बुढ़ापे में भी कभी कभी ज्यादा नींद चाहिए। लेकिन एक दृष्टि से बुढ़ापे में नींद कम आती है, लेकिन बैठे बैठे बुढ़ापे में आदमी बहुत सोता है, हर 2 मिनट में नींद के झोंके आते रहते हैं बुढ़ापे में। लेकिन साधारणतः जब व्यक्ति बड़ा हो जाता है उस समय तो 6-7 घंटे ज्यादा से ज्यादा आदमी को सोना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। कभी हम सुनते हैं, ये प्रश्न ऐसा है कि एक व्यक्ति के स्वप्न में उसके गुरु आते हैं और उसको कोई आदेश देते हैं, क्या ये सत्य है? क्योंकि हम लोग तमोगुण के प्रभाव में हैं, तो ये संभव कैसे है? ये उन लोगों के लिए संभव है जो कि शुद्ध भक्त हैं। लेकिन हमारे स्वप्न में अगर कोई आए, ठीक है आए, लेकिन और भी बहुत कोई आते हैं सपने में, केवल भक्त ही नहीं आते हैं, है ना, बराबर है? इसलिए अपने स्वप्नों को हमें ज्यादा गंभीरता से लेना नहीं चाहिए, और वैसे भी ऐसी कोई बात है तो थोड़े भक्तों से सलाह मशवरा कर सलाह ले सकते हैं। लेकिन कई बार कितने लोग आके हमसे प्रश्न पूछते हैं, हमने ऐसा ऐसा स्वप्न देखा, कोई बात नहीं, हमने भूल जाओ, आगे चलो, जप करते रहो, हरे कृष्ण बोलते रहो। जैसे एक बार प्रभुपाद को किसी ने पूछा कि प्रभुपाद जब हम जप करते हैं ना तो हमको ही वो जो लाल लाल रंग के बत्तियां दिखाई पड़ती है। उन्होंने कहा हरे कृष्ण बोलो, बत्तियां चली जाएंगे। अब बत्तियां आए नहीं आए कोई फर्क नहीं, स्वप्न हमारे लिए आए नहीं आए कोई फर्क नहीं, हमें केवल हरे कृष्ण जप करते रहना चाहिए बस। और कोई प्रश्न? कहां से है प्रश्न?
हाँ, वो हो जाता है शरीर तो बिल्कुल ही एक मृत शरीर हो जाता है, ये समझने वाला वो उसको कौन कौन बता दे?
क्या प्रश्न ये है कि आदमी स्वप्न में है या सुषुप्ति में है, हम कैसे पहचाने, यही प्रश्न है? कोई जरूरत नहीं है हमें पहचानने के लिए, हमारे लिए क्या लाभ है इसका?
स्वप्न में ये आया ये आया
तो उसको देखा, उसके बारे में कौन याद दिलाता है? कहा जाता है, वैज्ञानिक ऐसे कहते हैं कि जब आप स्वप्न के दौरान या तुरंत बाद जाग जाते हैं तो उस स्वप्न को आपको याद आप उसको याद कर सकते हैं, आपको याद रहता कि यह सपना आया था। वैसे रात को कई सपने आते हैं, लेकिन हम केवल उन सपनों को याद कर सकते हैं जिनके दौरान हम जागृत हुए हैं। अगर जागे नहीं होंगे तो शायद हमें पता भी नहीं चलता कि, ठीक है। लेकिन अंततः याद दिलाने वाले कौन है? भगवान श्री कृष्ण परमात्मा के रूप में।
हरे कृष्ण।
यहां प्रश्न है कि नींद आने पर या सोने से जागने के लिए परमात्मा उठाते हैं, मतलब नींद जब आती है तो परमात्मा सुलाते हैं और नींद के बाद आते हैं, तो प्रवचन के समय जो नींद आती है तो उस समय परमात्मा क्यों नहीं उठाते हैं? परमात्मा ने यह काम आपके बाजू में बैठने वालों के लिए छोड़ दिया है। जब आपके बाजू वाला अगर भक्त सो रहा है तो उसको जगाने की सेवा, क्योंकि आपको सेवा में लगाने के लिए, तो हमारे बाजू में कोई भक्त सोया हुआ हो तो उनको हमें जगाना चाहिए। वैसे भी हमारी इच्छा के अनुसार, हमारे कर्म के अनुसार भगवान कह रहे हैं उठो उठो, लेकिन हम कहते हैं नहीं नहीं हमको सोना है, तो भगवान ठीक है सो जाओ, तो सुला देते हैं भगवान। हमारी इच्छा होनी चाहिए, हमारे कर्म भी होने चाहिए। वैसे भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि ऐसा कोई समय नहीं है जब आत्मा क्रियाशील नहीं होती है, तो हम सुषुप्ति कैसे जान सकते हैं? सुषुप्त की अवस्था में ऐसा नहीं है कि आत्मा अचेतन है, चेतन है, लेकिन उसकी चेतना प्रकट नहीं हो सकती है क्योंकि शरीर उस अवस्था में होने के कारण वो ढक गया है। जैसे कि हम बिजली का स्विच ऑफ कर देते हैं, बिजली स्विच तक है लेकिन केवल लाइट में नहीं गई है, ऑन करने से फिर से चालू हो जाएगा, बिजली तो है वहां तक। ठीक उसी तरह से चेतना तो आत्मा में है लेकिन शरीर के और मन की एक अमुक अवस्था की वजह से आत्मा की चेतना बाहर तक प्रकट नहीं हो सकती है। लेकिन फिर भी आत्मा क्रियाशील है, क्योंकि अगर आत्मा नहीं होता शरीर के अंदर तो आदमी सांस कैसे लेता? आदमी सांस लेता है ना सोते समय भी, कभी भी खर्राट वो भी करता है ना, आवाज करता है सोते समय, कैसे करता है? क्योंकि आत्मा क्रियाशील है अभी भी सुषुप्ति की अवस्था में भी। और कोई प्रश्न है? हाँ जी।